गुणेभ्यः करतारम् यदा द्रष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेति मद्भावं सोऽधिगच्छति. When one properly sees that in all activities no other performer is at work than these modes of nature, and he knows the Supreme Lord, who is transcendental to all these modes, he attains my spiritual nature. This evening, from the 19th sloka of the 14th chapter of Bhagavad Gita. In the purport, Srila Prabhupada explains how it is that the living entity within this material world is in a completely helpless condition under three modes of material nature. One who is in illusion sees this material existence without reference to its connection to the Supreme Personality of Godhead. The difference between material consciousness and spiritual consciousness is simply this. When we understand how everything is coming from Krishna, how everything is an expansion of Krishna's own energies, and how to utilize everything according to the will of Krishna, then we can see everything in spiritual consciousness. But when we think that anything is separated from Krishna, and our use of anything is separate from the will or the service of Krishna, that is material consciousness. In that consciousness, we come under the grips of the three modes of material nature. Nityo nityanam chetanas chetananam eko bahunam yo viradati kaman. That everyone who is an expanded part and parcel of Krishna is eternally under the control of Krishna. But the Jivatma has the free will to choose whether we want to be under the control of Krishna's material energy through the process of forgetting Krishna, or whether we want to be under the control of his spiritual energy, the energy of love, which brings about the awakening of the eternal ecstasy that is dormant within us. Within this material existence, the three modes of material nature are ruling everyone. And the word guna is often translated as rope. Just as we are tied by ropes and we are dragged into so many activities, dragged to speak so many different types of subjects, dragged to think in so many various ways. But Bhagavad Gita teaches us how to be freed from these ropes of material nature. And the only way that is possible is explained by Krishna himself. Daivi heshu gunamayi mama maya duratyaya mam evam ye prapadyante mayam etad tarantite. That this material existence conducted by the three modes of nature is very difficult to overcome. These ropes are stringent. We are captive. We are prisoners. The only way we can be relieved from this suffering condition is if we surrender to Krishna. Because Krishna is the controller of material nature. Mayadhyakshena prakriti suyate sacharacharam. At the time of death, every conditioned soul in forgetfulness of Krishna has to meet the superintendent of death, Yamaraj. In Yamaraj's abode, it is a place where all living beings have to face the judgment of all of their previous sinful karma. And the Manusmriti explains in great detail what kind of karmic reaction there is for even the activities which are considered ordinary every day in our lifestyle today. In Kali Yuga, what is considered the conventional normal way of life is actually subjected to terrible, terrible punishment. And in this connection, Srila Prabhupada explains the story of Ajamil. Ajamil was actually a devotee of the Lord when he was young. He had his spiritual master and he was engaging in spiritual life. But what we associate with, we become that. That is the law of nature. If you associate with saintly people, you will undoubtedly become saintly. And if you associate with materialistic people, you will lose all your inner spiritual qualities. So Ajamil happened to associate with a young lady who was a prostitute, addicted to materialistic life. And in that association, he became a most sinful person. He abandoned his own religious wife, his mother, his father, his friends, his guru, everyone. Because the mind and the senses are so strong. Krishna says in Gita that the senses and the mind are so impetuous that they can even carry away the mind, the intelligence of a man who is endeavoring to control them. Chaitanya Mahaprabhu, who was the great sannyasi, who was the supreme personality of Godhead himself, but he was in the role of a devotee to teach us the proper path of Sanatana Dharma. Niskinchananam, he explained in one beautiful verse, that if one is endeavoring to cross over this ocean of birth and death and attain the abode of the Lord, to associate with people who are too much attached to material sense enjoyment, it is worse than drinking poison willingly. Why worse? Because poison kills the body. That is not much of a loss. But the poison of too much sinful association kills our inherent inclination to serve the Supreme Personality of Godhead. And that is like death to the immortal soul. In this way, Ajamil lived his life. And at the time of death, because of his previous devotional activities, the Lord never forgot. Neha bikramanasosti pratyavayo nividyate svalpam apyasya dharamatra. Krishna says in Gita that whatever advancement you make, Krishna in your heart will never forget that. Srila Prabhupada told us that if you even once chant the holy name of the Lord seriously, Krishna will never forget. He will definitely bring you back to the path of bhakti, even if you commit the most abominable activities. So by the Lord's arrangement, he called upon his son, his youngest son, Narayan, just when he was about to leave his body. The Yamadutas appeared. They tied him with the ropes to bring him to Yamaraj's court. And they were ferocious, terrible-looking beings. And when Ajamil saw them, he realized that he made big, big, big mistake in his life. But he was helpless. You cannot fight the Yamadutas. And just as they were pulling his subtle body and his soul out of his gross form, at that moment, the Vishnu Dutas, four beautiful, beautiful personalities appeared, and they cut the ropes of the Yamadutas. And there was a discussion. The Vishnu Dutas told the Yamadutas that you cannot take him because he has chanted the name of Narayan. And the Yamadutas were powerless. They were defeated. So they went back to Yamaraj. Srila Prabhupada explains they were simultaneously angry and frustrated. They were practically ready to commit suicide because they were thinking Yamaraj is the Supreme Lord. And in this material world, even the demigods are under his control. How is it that if you are supreme, that anyone had the power to stop us from executing your judgment? The Yamadutas were very upset. They said, we took him with our ropes, but because he said the name of Narayan, these Vishnu Dutas foiled all our efforts and defeated us. And when Yamaraj heard the name of Narayan, he became ecstatic. And he began to explain to the Yamadutas. First, before saying anything, he began to meditate in great bliss on the name, the form, and the qualities of Lord Narayan. Because Mahajan, Yamaraj is such a Mahajan, the great devotees of the Lord know that the only way they can speak the truth is if they pray to the Lord to speak through them. Krishna speaks in the scriptures. If we repeat the scriptures with the blessings of Guru and Krishna, then we understand that Krishna's power can come through us, whoever we may be. So Yamaraj, with all of his power and all of his greatness, he humbly prayed to the Supreme Personality of Godhead to instruct the Yamadutas in the Absolute Truth. And then he spoke that myself and Shiva and Brahma and Surya and Agni and Vayu, Ganapati, all of these devatas, we may be the lords of a certain division of this creation, but we are all gaining our power from the one Supreme Lord, Narayan or Krishna. He is the master of everyone. And he has descended within the beautiful sound of his name. The Lord is none different than his name. And anyone who sincerely chants the holy name of the Lord with offenseless consciousness is freed of all previous sins of all previous lives. And anyone who is the servant of such a devotee who is chanting the holy names is eternally protected by the Lord himself. And Yamaraj, in great bliss, he warned the Yamadutas, do not ever approach a devotee. Do not ever approach anyone to punish who has chanted the name of the Lord sincerely even once in his life. In fact, I say, anyone who bows down to such a devotee, do not go near them. Because if you do, Lord Vishnu himself, with his chakra and his club, will stop you. He will destroy you. So this beautiful pastime, Yamaraj himself is describing the glories of the chanting of the holy names of the Lord. Even the most wicked, even the most lowly and fallen can achieve the highest position by sincerely chanting the holy names of Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. And in this age of Kali Yuga, Sri Chaitanya Mahaprabhu has descended. He has descended to teach everyone the wonderful process of Harinam Sankirtan. And His Divine Grace, Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, with such faith in Krishna's holy name, traveled to all parts of this world, inducing everyone without discrimination to perfect their lives through the chanting of Krishna's holy names and by living according to Krishna's precious teachings. Srila Prabhupada's message was simple. Although the philosophy behind this message is so powerful, so profound, and so complete, it answers all questions and defeats all opposition. The conclusion is to chant Hare Krishna and be happy. To live together in harmony in the association of devotees and to find our happiness and bliss not in trying to intoxicate ourselves with the sources of misery in the forms of the pleasures of this world, but by coming together in wonderful congregations like tonight and raising our arms and dancing jubilantly and loudly calling out Krishna's holy name.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare.
And hearing the wonderful glories of Krishna's names and Krishna's devotees who have taken shelter of the name. Srila Prabhupada is certainly the most merciful, compassionate servant of all living entities because He has given us the supreme charity of His divine grace in the form of the path of pure bhakti. And He has left behind, before He disappeared from this world in His physical sense, His books, His instructions, His temples, and His devotees. This evening we are very fortunate. One of the most intimate, loving associates of Srila Prabhupada has come to give us His divine blessings. Srila Bhakti Charu Swami Maharaj. When he first met Srila Prabhupada, Srila Prabhupada was so blissful to see a young, intelligent Bengali sadhu coming to take shelter of his lotus feet. Srila Prabhupada took the original Sanskrit literatures and even the Bengali literature of Chaitanya Charitamrita and translated them through his purports into the English language. But he specifically, practically, in one of their first meetings, he instructed Srila Bhakti Charu Maharaj that I would like you to translate all of my books into Bengali, the very native tongue of Srila Prabhupada himself. He has given them this most sacred mission, and Srila Bhakti Charu Maharaj has translated practically every one of Srila Prabhupada's books into Bengali, and they are being distributed profusely. He also, in his most ecstatic, loving mood of glorifying his spiritual master, has created this wonderful television series which is showing all around India and soon all around the whole world, describing the glory of the life of Srila Prabhupada. Because the more we understand Srila Prabhupada, the more we understand Krishna and the means by which we can perfect our life in surrender and devotion to Krishna. He has also traveled throughout the whole world, preaching, leading beautiful, sweet, wonderful kirtans, counseling people in so many various ways. And I will say with a very convinced heart that he is one of the most loved devotees in the entire universe. And tonight we will also have the opportunity to express our love for Srila Bhakti Charu Swami. Let us welcome him to our congregation. He is truly one of those devotees Yamaraj was discussing. The Yamadutas are very afraid of Bhakti Charu Maharaj. So if we collect the dust from his feet, we will be protected always from their influence. And Krishna will certainly reward us for honoring and hearing from such a wonderful servant of Srila Prabhupada. So at this time, I would like to request Srila Bhakti Charu Maharaj to enlighten us with his divine words.
Today, oh, I'm sorry, I'm supposed to speak in. Aaj hame aap sabko milne ka ye बहुत सुंदर अवसर और सौभाग्य श्रील राधानाथ महाराज की कृपा से हुआ है. अगर राधानाथ महाराज हमें यहां नहीं बुलाते थे तो आप सबको मिलने का यह सौभाग्य मेरा नहीं होता था. राधानाथ महाराज ने उनके भाषण के अंत में मेरे बारे में कुछ बोला है, बल्कि असल में राधानाथ महाराज जैसे भक्तों श्रील प्रभुपाद की महिमा सारा दुनिया भर फैला रहे हैं. उसका प्रमाण आज यहां हम सब देख रहे हैं. राधानाथ महाराज इतना सुंदर रूप से भगवान के वाणी का प्रचार कर रहे हैं और श्रील प्रभुपाद जी का महिमा का प्रचार कर रहे हैं. उसी के कारण आप सब उनके प्रति आकृष्ट होकर श्रील प्रभुपाद के चरण कमलों का सहारा लेने का तैयारी कर रहे हैं या प्रभुपाद जी का चरण कमलों का सहारा प्राप्त किए हैं. भक्त कौन है? भक्त वो हैं जिनके हृदय में भगवान सदा विराजमान है. ऐसे तो हर जीव के हृदय में भगवान विराजमान है, परंतु जब कोई जीव भगवान को पूर्ण भक्ति और प्रेम के साथ अपना हृदय में दर्शन करते हैं और भगवान का पूजा करते हैं, अर्चन करते हैं और भजन करते हैं, उसी के हृदय में भगवान प्रकट होकर उनकी माध्यम अपना कृपा विस्तार करते हैं। जब ये पूछा गया था कि भक्ति को प्राप्ति कैसे हो सकता है, तब उसका उत्तर में ये बताया गया कि भक्ति केवल भक्तों का कृपा से ही प्राप्त हो सकता है, या हम सब भक्तों के कृपा के माध्यम ही केवल भगवत भक्ति प्राप्त हो सकते हैं, नहीं तो और किसी भी उपाय से हमें भगवत भक्ति नहीं मिल सकता है। इस विचार हमारे पूर्वतन आचार्य श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने किए हैं। उनने अपना माधुर्य कादंबिनी ग्रंथ में बताए हैं, उन्हें विचार कर रहे हैं कि भक्ति हम कैसे प्राप्त हो सकते हैं। अगर कहें कि भगवान किसी व्यक्ति को भक्ति देते हैं और किसी को नहीं देते हैं, तो हमें ऐसा मालूम होगा या सारे आदमी बोलेंगे कि भगवान पार्शियल है। पार्शियल का हिंदी पक्षपात, भगवान पक्षपात करते हैं, बल्कि भगवान निरपेक्ष हैं। भगवान के एक गुण है कि वो निरपेक्ष हैं, वो किसी को पक्षपात नहीं करते हैं। तो हम विचार ऐसे हो सकता है कि भगवान किसी को बोलते नहीं कि हम तुमको भक्ति देंगे और तुमको भक्ति नहीं देंगे। भगवान कहते हैं कि सभी को ही हम भक्ति देना चाहते हैं। तो ये विचार हो सकते हैं, हो सकता कि कोई व्यक्ति अपना कर्म के मुताबिक पुण्य कर्म करने के कारण भक्ति को प्राप्त होते हैं। फिर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं कि अगर पुण्य कर्म के माध्यम अगर भक्ति प्राप्ति हो सकता था, तब भक्ति भी कर्म के अंतर्भुक्त हो जाता था, परंतु भक्ति तो कर्म के इज नॉट सबसर्वियंट टू कर्म, उसका कर्म का अंतर्भुक्त नहीं है। तो भक्ति प्राप्ति कैसे हो सकता है? भक्ति प्राप्ति केवल भक्तों का कृपा से ही हो सकता है। भगवान निरपेक्ष हैं, परंतु भक्त निरपेक्ष नहीं है। जो भगवान का वाणी प्रचार करते हैं, जो मध्यम अधिकारी भक्त जो हैं, वो विचार करते हैं कि कौन भक्त है, कौन बालिश, या कौन किसे वो निर्बोध है और कौन विद्वेषी है। और इस विचार से मध्यम अधिकारी भक्तों ने भिन्न भिन्न व्यक्ति के साथ भिन्न भिन्न रूप से आचरण करते हैं। भक्तों के साथ उनका मैत्री है, जो जानता नहीं है भगवान के बारे में, उसको वो भगवान का वाणी सुनाते हैं, और जो भगवत विद्वेषी हैं उनसे वो दूर रहते हैं। ईश्वरे तदधीनेषु बालिशेषु द्विसत्सु च प्रेमो मैत्री कृपा उपेक्षा ज करोति स मध्यम। ये मध्यम अधिकारी भक्तों जो भगवान का वाणी का प्रचार करते हैं, वो जब देखते हैं कि कोई आदमी भगवान को बारे में नहीं जानते हैं, वो निर्बोध हैं, परंतु उनका हृदय में भगवान के प्रति कोई विद्वेष भाव नहीं है, तब वो कृपा करके उनको भगवान भक्ति प्रदान करते हैं। और ये भक्ति का प्रदान कैसे होता है, भक्ति का संचार कैसे होता है, भक्तों का हृदय में भगवान विराजमान है। तुम्हारो हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद कहे मम वैष्णव पराण। भगवान भक्तों के हृदय में विराज करते हैं और भगवान कहते हैं कि वैष्णव भक्त जो है वो मेरे प्राण है। तो जिनका हृदय निर्मल हो गया है, उन्हीं का हृदय में, वो वैष्णव का हृदय में भगवान विराज करते हैं। और उस वैष्णव जब किसी के प्रति कृपा करते हैं तो भगवान उसके प्रति आभारी होकर अपना कृपा उनके ऊपर वर्षण करते हैं। इस ढंग से ही केवल हम भक्ति प्राप्त हो सकते हैं। इसीलिए हम देखते हैं, और प्रभुपाद जी भी कहते थे कि भक्त कौन है उसको हम पहचान सकते हैं उनके प्रचार के माध्यम। कितने भक्तों उन्हें बनाए हैं, कितने आदमी को ओ भगवान के चरण कमले और चरण कमल की ओर आकर्षण किए हैं, कितने आदमी को ओ भगवंत भगवत प्रेम प्रदान कर रहे हैं, और उसके द्वारा कितने आदमी को जीवन पूर्ण रूप से उन्होंने परिवर्तन कर चुके हैं। ये देखकर और किस रूप से भगवान के वाणी का उन्हें प्रचार कर रहे हैं, ये देखकर हम समझ सकते हैं कि भगवान का भक्त कौन है और किस ढंग से भगवान उसकी माध्यम अपना महिमा प्रचार कर रहे हैं। हम जब श्रील राधानाथ महाराज को देखते हैं तो हम देखते हैं कि प्रभुपाद की ये वाणी जो था है, ये वाणी का व्यावहारिक प्रकाश, कैसे उन्होंने भगवान के वाणी का प्रचार कर रहे हैं, और जहां भी उन्होंने जाते हैं कितने सारे आदमी उनके प्रति आकृष्ट होते हैं, आप जैसे हुए हैं। और देखिए, ये भक्ति जो है, ये नायम आत्मा प्रवचने न लभ्य, बड़े बड़े लेक्चर देने से कोई भक्त नहीं बनता है। भक्तों को जो बहुत सुंदर रूप से कथा सुनाते हैं वही केवल भक्त नहीं है। भक्त होने का योग्यता केवल वो नहीं है कि बड़े बड़े बातें करते हैं, बहुत सुंदर ढंग से कथा सुनाते हैं, बहुत बड़े सुंदर लेक्चर देते हैं, वो नहीं। नायम आत्मा प्रवचने न लभ न मेधया, बहुत ज्ञान है वो भी भक्त नहीं बन सकता है। न बहुना श्रुते न, बहुत पढ़े लिखे हैं वो भी भक्त नहीं है। परंतु जो अपने आप को भगवान के चरण कमलों में समर्पण किए हैं और पूर्ण रूप से भगवान को सेवा में लगे हैं, वो है असल भक्त। और उस भक्तों के पास जब हम जाते हैं तो उनको देखने से ही हमको हृदय में भगवत भक्ति का संचार होता है। स्वाभाविक आकर्षण होता है, और ये देखकर हम समझ सकते हैं असल भक्त कौन है। ये भक्ति भगवान की कृपा से ही हमें मिल सकता है, सद्गुरु और भगवान का ये कृपा का विस्तार होता है भक्तों के माध्यम। इसीलिए भक्त वो है जो अपने आप को और किसी भक्तों को सेवा में पूर्ण रूप में अर्पण किए हैं, और वो भक्त कौन है? श्री गुरुदेव। मतलब भगवान के भक्तों बनने के लिए हमें अपने आप को भगवान के भक्तों जो गुरु हैं उनके चरण कमलों में अपने आप को समर्पण करना पड़ेगा। ये गुरु बिना, गुरु कृपा बिना भगवत भक्ति मिलना संभव नहीं है। और जो सद्गुरु के पास अपने आप को पूर्ण रूप में समर्पण किए हैं, गुरु के माध्यम उन्हें भगवान का कृपा प्राप्त होते हैं। और उनके पास जब हम आते हैं तो हमारा हृदय में भी स्वाभाविक रूप से ही भगवत भक्ति का संचार होता है। इस ढंग से भगवत भक्ति का प्रचार होता है। भगवत भक्ति का प्रचार कोई कृत्रिम उपाय से नहीं हो सकता है। भगवत भक्ति जो है ये एक आध्यात्मिक मार्ग है, और ये आध्यात्मिक उपाय से ही इस मार्ग में हम आगे बढ़ सकते हैं और इस वृत्ति का विस्तार होता है। और किसी ढंग से भगवत भक्ति का विस्तार संभव नहीं है, नहीं, कभी नहीं होता है। भगवान स्वयं बोलते हैं, जो कहते हैं कि वो मेरा भक्त है वो मेरा भक्त नहीं है, परंतु जो मेरा भक्त का भक्त है वो है मेरा असल भक्त। भक्तों के माध्यम ही भगवान भक्ति के प्रचार करते हैं। हम देखे हैं भगवान के शुद्ध भक्त श्रील प्रभुपाद जी के माध्यम सारा दुनिया भर आज कृष्ण भक्ति का प्रचार हुआ है। और श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य प्रशिष्य जो अपना हृदय में भगवत भक्ति का ग्रहण किए हैं, उन्होंने भी इस भक्ति का प्रचार कर रहे हैं। ऐसे सारा दुनिया भर भगवत भक्ति का प्रचार हो रहा है और होते रहेगा। ये भगवत भक्ति का प्रचार जो है, ये भगवत भक्ति का प्रचार होने से ही इस दुनिया का असल कल्याण होगा, प्रकृत कल्याण होगा। ये सारा दुनिया का कितने सारे समस्याएं हैं, वो सारे समस्याएं का निवृत्ति या समाधान ये भगवत भक्ति के माध्यम ही हो सकता है। और इस योजना का शुरू श्रील प्रभुपाद कर चुके हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भविष्यवाणी किए हैं कि एक समय आने वाला है जब ये कृष्ण भक्ति का प्रचार पृथ्वी का हर गांव हर शहर में फैल जाएगा। पृथ्वीते आछे जतो नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइबे मोर नाम। ये हरि नाम का प्रचार सारा दुनिया के हर गांव में हर शहर में होगा। और इस कार्य का सूचना श्रील प्रभुपाद कर चुके हैं। श्रील प्रभुपाद जी ने सारा दुनिया भर आज कृष्ण भक्ति का प्रचार कर चुके हैं। और श्रील प्रभुपाद जी का जो भक्त है, जो पूर्ण रूप से अपने आप को श्रील प्रभुपाद जी का चरण कमलों में समर्पण किए हैं, उनके द्वारा इस कृष्ण भक्ति का प्रचार अब भी हो रहा है सारा दुनिया भर। और ये कृष्ण भक्ति का प्रचार बढ़ता ही जाता रहेगा। हर दिन, हर महीना, हर साल ये प्रचार बढ़ता ही जाता रहेगा। और एक ऐसा दिन आने वाला है, बहुत जल्दी ही आने वाला है, जब हम देखेंगे कि सारा दुनिया के हर गांव हर शहर में ये कृष्ण भक्ति का प्रचार हो चुका है और सारे दुनिया में ये हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन हो रहा है, सारे दुनिया में भक्तों लोग ये तिलक और माला ग्रहण करके भगवान के नाम कीर्तन कर रहे हैं। और तब ये दुनिया का सारे समस्याएं का पूर्ण समाधान हो जाएगा। आज हम देख रहे हैं इस बंबई शहर में कितना सुंदर प्रचार हो रहा है। राधानाथ महाराज प्रचार कर रहे हैं, गिरिराज महाराज प्रचार कर रहे हैं, गोपाल कृष्ण महाराज, श्रीधर महाराज यहां प्रचार कर रहे हैं और सारे भक्तों लोग प्रचार कर रहे हैं। मतलब उन्होंने कृष्ण भक्ति प्रदान कर रहे हैं, उन्हीं का हृदय में, उनका हृदय में भगवान विराजमान है। और जब हम उनके नजदीक आते हैं, उनके मुखारविंद से भगवान के पवित्र कथामृत श्रवण करते हैं, तो हमारा हृदय में ही हृदय में भी भगवत भक्ति का उन्मेष होता है। ये एक बहुत सुंदर रूप से ये दुनिया का सारे समस्याएं का समाधान हो रहा है। और असल में क्या हो रहा है, असल में सारे दुनिया भर धर्म का प्रतिष्ठा हो रहा है। धर्म का प्रतिष्ठा का मतलब सत्य, शौच, तप, दया, ये चार वृत्ति का प्रसार हो रहा है। सत्य का प्रसार हो रहा है, प्रचार हो रहा है। शौच पवित्रता का प्रचार हो रहा है। तप तपस्या का प्रचार हो रहा है। दया, ये चार जो महान धार्मिक वृत्ति है इसका प्रचार हो रहा है। और जितना ही ये धार्मिक वृत्ति का प्रचार होता रहेगा, उतना ही आमिष आहार, मांसाहार, नशा, अवैध स्त्री संग और दूतक क्रीड़ा, ये चार पाप कर्म का विनाश या रास और अंत में उसका पूर्ण विनाश होगा। आज अधर्म के प्रचार के कारण सारे दुनिया भर मांसाहार हो रहा है। भारत में भी जहां काफी आदमी शाकाहारी थे, आज वो लोग भी मांसाहार करना शुरू कर किया है। भारत में जहां नशा नहीं होता था, वहां के भी आदमी लोग नशा करना शुरू किया। जो अवैध स्त्री संग बहुत बड़ा पाप माना जाता था, आज ये एक जीवन का एक अंग बन चुका है। और जुआ, पासा, रेस, लॉटरी, ये जो दूतक क्रीड़ा है, ये तो हर जगह में हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि अधर्म का बहुत ही प्रचार हुआ है। अधर्म का विस्तार कली के प्रभाव से बहुत हो चुका है। परंतु आज चैतन्य महाप्रभु के कृपा से और प्रभुपाद जैसे चैतन्य महाप्रभु के भक्तों की कृपा से, जब कृष्ण भक्ति का प्रचार, युग धर्म का जब प्रतिष्ठा होता जाता रहेगा, तो हम देखेंगे कि बहुत सारे आदमी ये मांसाहार त्याग दिया है, नशा छोड़ दिया है, परस्त्री गमन छोड़ दिया है और दूतक क्रीड़ा छोड़ दिया है। और ये जब छोड़ देते हैं तब क्या होता है? सत्य का प्रतिष्ठा होता है, शौच का प्रतिष्ठा होता है, तप का प्रतिष्ठा होता है और दया का प्रतिष्ठा होता है। ये चार है धर्म के चार स्तंभ। इसके ऊपर धर्म खड़ा रहता है। ऐसे हम देखेंगे धीरे धीरे धर्म का प्रतिष्ठा हो रहा है, हम देखेंगे ये धर्म का जब प्रतिष्ठा होगा तब प्यार भी सारे दुनिया भर प्यार का भी प्रसार होगा। अब क्या हो रहा है, सारा दुनिया भर हिंसा हो रहा है, एक दूसरे को सहन नहीं कर सकता है, एक दूसरे को मारने का और एक दूसरे को संहार करने का प्रयत्न कर रहा है हर जगह में, और सारा दुनिया भर संघर्ष हो रहा है। परंतु जब ये कृष्ण भक्ति का प्रचार होगा तब क्या होगा, सारा दुनिया भर एक प्रेम का प्लावन बहता रहेगा। और जब ये प्रेम से हर व्यक्ति जब प्रभावित होगा तो उसका जितने सारे बुरा प्रवृत्ति हैं वो सारे वो छोड़ देंगे। तब क्या होगा, ये दुनिया एक बहुत सुंदर जगह जो जिसे वैकुंठ कहा जाता है, भगवान के धाम जैसे सुंदर और पवित्र बन जाएगा। और ये होने वाला है। मैं जब यहां आया, एक पहला अनुभूति जो हुआ कि ये जगह में एक प्यार का स्पंदन है। देखिए मेरा हिंदी तो उतना